શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 40 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 5.
गुजरात में खास तो सौराष्ट्र में गुरुदेव के पूरी थोड़े काल में और अनंत भोगन का छेद करने वाला जो आत्मज्ञान है, ऐसे आत्मज्ञान से संपन्न के आत्मसमर्पण करते थे उनके लिए इसके पीछे देव लोक में से वो मनुष्य होंगे तभी लोग चार उपचार क्रमकार करके मोक्ष में पता रहे का जाति स्मरण ज्ञान था तो 5 साल की उम्र में था और 17 साल की उम्र से उनकी स्वयं की आत्म के विषय में चार धारा चालू थी और स्वयं के कथन से अनुसार 24 साल की उम्र में भ्रमण का शेलक समय दर्शन और आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। ऐसे आत्म की वाणी सभी आत्मपुरुषों की वाणी को साफ कहने में आता है क्योंकि आत्मान जी के वचन को देखते हुए हमें प्रतीत होता है कि उनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा की कुछ 15 साल की उम्र से जागृत हुई थी और हमने दर्शन के प्रति वो विचारधारा यथार्थ रूप से में स्वयं का अनुभव में तो समर्थन बनी। यहाँ संकलन का 5 नंबर का पेज है, उनका 21वां वर्ष है। सम्यक दर्शन के पहले 3 साल के बाद है क्या लिखते हैं कि विशाल बुद्धि मध्यस्थता सरलता और जितेंद्रियता जितने गुण जिस आत्मा में हो वह तत्व पाने के लिए उत्तम पात्र है। संकलन में खास करके मनुष्य जीव को मार्गदर्शन मिले और सही जानकारी मिले और अपना प्रकार में उसको कुछ प्रयोजन विषय में मार्गदर्शन मिले, ऐसे ऐसे वचनों को सुनकर उसका संकलन किया है। तो यहाँ कहते हैं कि तत्व के पात्र, तत्व पाने के लिए पात्र कौन है, उत्तम पात्र में अच्छा पात्र कौन है कि जिसकी बुद्धि विशाल हो, संकुचित बुद्धि जिसकी न हो, विशाल बुद्धि हो, और वचस्ता अवसाद का विचार करने की शक्ति ठीक प्रमाण में अच्छे प्रमाण में हो, साथ ही पक्षपात न हो। वचस्ता में पदार्थ का परिज्ञान करने में जैसा पदार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा इसका भाव है, विकृत हो अविकृत, जैसा भी जो है वैसा को उस रूप में ही जाने और अधिकतम नहीं जाने, अधिकतम तो नहीं जाने और विपरीत अन्यथा भी नहीं जाने, ऐसा एक जानने का उसी में प्रकार होता है, उसको मध्यस्था कहते हैं। वैसे तो ये विशेषण यथार्थ रूप में तो सम्यक ज्ञान को ही लागू होता है। एक सम्यक ज्ञान ही ऐसा है कि जो मध्यस्थ होकर स्वेच्छ पदार्थ का यथार्थ जानने का कार्य करता है, और जो सम्यक ज्ञान का अधिकारी हो, सम्यक ज्ञान का जो पात्र हो, उसकी भी ज्ञान की जो लाइन है परिणमन की, वो इसके अनुरूप होती है। तो भूमिका है इसका, यहाँ संकेत है मध्यस्था, ज्ञान की मध्यस्था दिया, ये सम्यक ज्ञान की शुरू की स्थिति की क्या अनुरूपता है, इसका एक संकेत है कि ये मुमुक्षु जो है वो मध्यस्थ रूप में ही सभी पदार्थों को जानने का प्रयास में रहता है। भले ही पूरा मध्यस्थ नहीं हो सके तो भी इसके अभिप्राय में तो ये बात अवश्य रही है कि मेरे तो मध्यस्थ होना है, किसी भी अनुचित राग और देश वाले और कुछ के पक्ष में मुझे डरना नहीं है। जो पदार्थ जैसा है वैसा ही मैं जानू, इसके विपरीत अन्यथा कम अधिक नहीं जानू, ऐसा मेरा ज्ञान का जानने का कार्य होना चाहिए। ऐसी एक मध्यस्थ बुद्धि की प्रयास रूप जो प्रक्रिया है जिसको चलती हो, वो तत्व के पाने के लिए अधिकारी है और पात्र है। और सरलता खास करके चारों गतियों में मनुष्य भाव है, वो तो सरलता का परिणाम का फलस्वरूप है। बात आई है चार गति में, किस किस परिणाम से, मुख्यतया किस किस परिणाम से चार गति का, किसी गति की प्राप्ति होती है चार गति में, इसमें सरल परिणाम से मनुष्य गति की प्राप्ति होती है, और सरल परिणाम से मनुष्य गति की प्राप्ति हुई उसमें भी जो सरल परिणाम करते हैं, अधिक सरल परिणाम करते हैं, वो धर्म के नजदीक आने का पात्र है, तत्व पाने का पात्र है, ऐसा कहने में आता है। वो सरलता क्या चीज है? सरलता ये चीज है कि जो जीत से, हट से और वक्रता रूप परिणाम से प्रतिपक्ष वाले जो परिणाम है उसको सरलता कहने में आती है, और जिसको अपना आत्महित ही करना हो तो दूसरे दूसरे विषय में इतना हट नहीं करते, हित नहीं करते, और जो भी प्रसंग क्या हुए चलता है उसमें वो उसको गौण कर देते हैं, सरलता से उसमें उदारता रखते हैं, उसको सरल परिणाम कहते हैं। तो सरल परिणाम का मतलब यही हुआ कि स्वयं का आत्म स्वरूप के अलावा दूसरे विषय में असरल भाव से प्रकट करना, रुकना नहीं है, ऐसे परिणामों को सरल परिणाम कहते हैं। और ऐसे जो सरल परिणाम उसकी मिले उसको सरलता रूप जो विराटता है, विराटता कैसी है, वो स्वयं सरलता गुण संयुक्त है, सरलता का गुण है, वो तो उत्तम सरलता है, इसमें है उत्तम क्षमा का द्रव्य न, उत्तम क्षमा, उत्तम आर्द्र, उत्तम आर्द्र, उत्तम सरलता है, ये सरलता है वो विराटता रूप पर्याय है और उसकी पूर्व भूमिका में उसी के अनुरूप जो सरलता है, इसलिए उनको तत्व पाने के लिए पात्र है, ऐसा बताया गया। ये सरलता और जितेंद्रियता पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति सत्य ठीक जो आकर्षण है उसमें परिणाम जो मेले होते हैं इस अपवित्रता को छोड़ने के लिए, भले ही सम्यक दर्शन न हो, भले ही आत्मस्थिरता त्याग की अवस्था संयम की अवस्था न हो, फिर भी जो भी उदयमान जो विषय है उसके प्रति कम रस का होना, उसके प्रति रस का कम होना, या इतनी मर्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो बात ली है तत्व पाने के पात्र जीव कैसा है, तत्व पा लिया है इसकी बात नहीं है, लेकिन पात्र कैसा है इसकी बात लिया है, क्योंकि जितना ही पर विषय के संबंधित रस है, रस ही अशुद्ध रस है, मैला रस है, जो ज्ञान को मलिन करता है, ज्ञान दर्पण को वो शरीर रूप में शुद्ध रूप में नहीं रख सकता, मैंने ज्ञान में अपना ज्ञान का ही स्वरूप जिसको प्रतिभाषित नहीं हो गए ऐसी परिस्थिति पैदा करता है, वो पर रस है जिसमें पांच इंद्रियों का विषय के समावेश है, और एक वचन में उसको कहे तो ये ऐसी बात है कि हमें आप अनुकूलता चाहिए और प्रकार की बाह्य प्रतिकूलता हमें नहीं चाहिए, इसमें पांचों इंद्रियों का विषय समाविष्ट है, आ जाता है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता वाला जो प्रकार है प्रेम का, इस प्रकार में जो रस जाता है उसमें जितेंद्रिय पना कभी 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 नहीं आता है, मनुष्य की भूमिका का जो जितेंद्रिय पना है वो मनुष्यों को की जो परिणाम में कुछ प्रैक्टिस है वो ऐसी होनी चाहिए कि हर हालत में, हर प्रकार के उदय में उनको इष्ट अनिष्ट पड़े में, यानी अनुकूल प्रतिकूल होने में उसका जागृति है वो रहनी चाहिए कि जिसकी वजह से उसका रस नहीं पड़े। रस नहीं बढ़ने वाली जो जागृति है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा कार्य मुझे आत्महित कार्य करना है, इसमें जो भी बाधक कारण है उसमें मुख्य तौर से जो बाधक कारण है जो इष्ट अनिष्ट पणा की बुद्धि रूप व्यामोह है, कोई इनको मिथ्यात्व को त्याग करने नहीं देता। मिथ्यात्व का त्याग करना है वो नहीं करने देने वाली जो तो इस प्रकार की बुद्धि है। इतने गुण जिस आत्मा में हो ऐसे गुण से इस प्रकार के योग्य परिणाम से संयुक्त हो ऐसा जी तत्व पाने के लिए मैंने समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र जो धर्म है उसको प्राप्त करने के लिए, स्वतत्व का अनुभव करने के लिए वो पात्र है, मैंने लायक है, अधिकारी है, ऐसे ही तत्व के अधिकारी की बात एक विषय के वर्ष में किया है। उसी पत्रांक ने 40 नंबर का पत्रांक है, उसी पत्रांक में आगे वो लिखते हैं कि अनंत जन्म मरण कर चुकने वाली इस आत्मा की तुलना वैसे अधिकारी को उत्पन्न होती है और वही कर्म मुक्त होने का अभिलाषी कहा जा सकता है। वही पुरुष यथार्थ पदार्थ को यथार्थ स्वरूप से समझ कर मुक्त होने के पुरुषार्थ में लग जाता है। ये मनुष्यों के लिए इसलिए स्पष्ट है ये वचन कि मनुष्य है वो पदार्थ का यथार्थ स्वरूप समझने का प्रयास करता है। जो शास्त्र स्वाध्याय की प्रक्रिया है इसमें पदार्थ का यथार्थ स्वरूप समझने की प्रयास है। वो प्रयास कब सफल होता है इसका विधान इस प्रश्न रखते हैं। वैसे तो लोग ऐसे समझते हैं कि बुद्धि तेज हो सूक्ष्म ज्यादा हो तो पदार्थ के स्वरूप में समझने में ये बुद्धि काम में आएगी, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं की है। यहाँ तो ऐसी बात की है कि अनंत जन्म मरण कर चुकने वाली इस आत्मा की करुणा वैसे अधिकारी को ये अधिकारी मैंने पात्रता वाला जीव लिया। कैसी पात्रता का क्या लक्षण है? पात्रता के अनेक लक्षण है, ऐसे इनके दो प्रकार है, एक प्रकट पात्रता रूप है एक गर्भित पात्रता रूप है। गर्भित पात्रता का विषय है वो ऐसे प्रकट रूप में नजर नहीं आता, एक ज्ञानियों के गहराई का विषय रहता है, जो ज्ञानी उसको पाता है समझता है और उसके ज्ञान में वो आ जाता है। ये जीव वर्तमान में इतना पात्रता लक्षण वाला प्रकट रूप में नहीं दिखता है, फिर भी इस जीव में कोई गर्भित पात्रता है जो आगे जाकर अपना जीव में कामयाब होगी। ये ज्ञानियों के शुद्ध ज्ञान की गंभीरता का ये विषय है और ये अलौकिक ज्ञान का विषय है, कोई लौकिक ज्ञान का विषय तो इनके अनुभव की बात रही। और प्रकट पात्रता के भाव से लक्षण है इसमें एक बात यह दिया है कि जिस आत्मा को अपने अनंत जन्म मरण हुआ है इससे मुक्त होने के लिए अपनी ही करुणा पैदा हुई हो, ऐसा एक लक्षण दिया है। ये पात्रता का बहुत से इनके लक्षण है, जब जब कोई बात होती है उसका ध्यान बताएंगे कि ये पात्रता की बात है, ये पात्रता की बात है। श्री बहन श्री ने तो अपने वचनामृत में खास बात मोटे रूप से ले ली है, बहुत सुंदर है पात्रता के विषय में कि जिसको एक आत्मा ही चाहिए और इस जगत में से कुछ नहीं चाहिए, खास बात पात्रता का लक्षण है ऐसा करते। और भी एक दो बात भी है लेकिन ये बात खास पात्रता में भी है, वो इस संदर्भ में इस बात को टांगी है कि जहाँ मनुष्य जीव सत्शास्त्र का अध्ययन करने के बावजूद भी तत्व को नहीं पाता है इसका क्या कारण है, ऐसा प्रश्न जब पूछा गया है तो उन्होंने इस बात को खोली है। खास पात्रता वाला जीव होता है वो भूलता नहीं है, वो अटकता नहीं है, उसकी भूल में विपर्यास की समझदारी में विपर्यास की भूल पैदा नहीं होती है, ऐसा कह करके खास पात्रता का निर्देश किया है। यहाँ श्रीमद जी ने एक दूसरी बात की है और ये बात जो है वो शायद सभी पात्र इसके परिणाम में आती है कि अनंत जन्म मरण कर चुकने वाली इस आत्मा की करुणा स्वयं की करुणा घटना दूसरी हुआ, एक मृत्यु का कारण सामने आता है तो मृत्यु तुल्य दुख में उतर जाता है। मैंने बहुभाग मनुष्य को ऐसा कारण सुनते ही मूर्छा को प्राप्त होते हैं, जैसे कैंसर आदि है, तो सुनते ही जैसे मृत्यु भी आ गई ऐसा मृत्यु को अनुभव करता है। एक मृत्यु के विषय में इतना दुख पैदा होता है तो अनंत जन्म मरण किया उसमें दुख इतना, तो इस दुख में से स्वयं को छुड़ाने की जो एक करुणा है, एक वेदना है, इस वेदना के साथ जिसकी अभिलाषा है, मेरे भावना है, उसे जीव को पदार्थ का यथार्थ स्वरूप समझने की ज्ञान की मुमुक्षुता की भूमिका पैदा होती है। मुमुक्षुता की भूमिका में ज्ञान की निर्मलता होना और स्वयं के स्वरूप को जैसा है वैसा ही प्रतिभास में लेना, ये कार्य होने के पीछे सभी दर्शनों में ज्ञान का प्रकट होने का पुरस्कार पैदा हो सकता है। इसके पहले किसी मनुष्य को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की नजदीकता नहीं है, दूरी कितनी भी हो सकती है लेकिन नजदीकता जरूर नहीं है। ये बात है, ये ज्ञान की निर्मलता का एक खास पात्रता का पॉइंट आउट किया है कि अपने आत्मा के विषय में अब ये अपने को अवलोकन करना है, अंतर में भीतर में देखना है कि क्या ऐसा भाव कभी अपने को आया है कि मैंने बहुत अनंत जन्म मरण लिए, बहुत दुखी हुआ हूँ, अब तो मैं इससे जैसे कैसे भी हूँ, जो भी इसके लिए सही मार्ग मुझे मिले उस मार्ग से मुझे मुक्त होना है। मुझे कोई पक्षपात नहीं है, किसी भी संप्रदाय का नहीं है, किसी और प्रकार का नहीं है, एक मुक्त होने की ही अभिलाषा है, क्योंकि मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है। ऐसी स्वयं की करुणा आती है तभी इस मार्ग और इस मार्ग के कहने वाले जानने वाले के समर्पण भाव होता है। इसके पहले समुचित परिणाम नहीं होता, शौक का ये कोई विषय नहीं है। शौक में क्या कहते हैं, ये संगीत सुन लिया, उसको टीवी देख लिया, उसको कर लिया, बस ये भी सुन लिया, घंटे पर अच्छा मजा आती है। कई प्रकार के नए नए लोग आते हैं शहर में, कई प्रकार की नई नई बातें करते हैं, तो अपने को मनोरंजन भी होता है। ऐसे ही मनोरंजन की चीज ये तो एक अपूर्व और असाधारण जरूरियात की आवश्यकता की चीज है, जरूरत जिसको ऐसा लगे कि ये आवश्यक है और आवश्यकता भी इतने हद तक वो महसूस करे कि पूरे के पूरे इसके पीछे लगने से इसको हासिल करनी है, जन्म मरण से मुक्त होना ही है। यहाँ से आदि पूरी होने के बाद कोई मौसी का घर नहीं है, वहां भी सुख से ऐसे रहेंगे। वहां तो यहाँ जैसा परिणाम हुआ है या क्या है या हुआ है, ठीक उसी के अनुसार एक कुदरत का भोग्य स्थान है, एक भोग्य विशेषना स्थान के प्रभाव जी है, ज्ञान सिद्धि में लिखा है, कि सारे विश्व में जैसा जिस जीव का परिणाम है बस कुदरत में उसी स्थान में उसके भोगने के लिए उसका जाना स्वयं होता है और भोगना स्वयं होता ही है। उसमें इंद्र नरेंद्र जिनेन्द्र कोई भी फेरफार करने के अधिकारी नहीं, ऐसी एक वस्तु व्यवस्था है। ये वस्तु दर्शन है, वस्तु का विज्ञान है, वस्तु का धर्म है, उसके अनुसार सब पदार्थों का परिणाम होता ही रहता है। ज्ञानी को धर्म, धर्मी को साधक को भी ऐसा परिणाम आंशिक विकृति का होता है, उसी का फल उसको भी होता है। तीर्थंकर द्रव्य भी नरक में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, प्रसिद्ध बात है। सैनिक महाराज प्रथम तीर्थंकर होंगे, आने वाली 24 में वो प्रथम तीर्थंकर होंगे, महापति तीर्थंकर होंगे। तो ये जो तो मुनि महाराज का अपराध किया था, साधना की तीव्र रौद्र ध्यान का परिणाम हो गया था, इसके तुम सोच रहे हो जैन धर्म की था ही नहीं, बौद्ध धर्म था, क्या ढोंग करके बैठा है निकल में ध्यान करता लगा के देखता हूँ कितनी उपेक्षा की, कितना तीव्र कठाय के रौद्र ध्यान हो गया, की गति फिक्स हो गई, फिक्स उसमें कोई देखभाल होने वाला नहीं। भले ही वो तीर्थंकर होने वाले लेकिन कुदरत की ये बात जिसकी समझदारी में है, ये समझ ही स्वयं इस आने वाले छोटे परिणाम को रोक। ज्ञान ही ऐसा परिणाम है जो जीव को सन्मार्ग में लगाता है पर उन मार्ग को छुड़ाता है। तो कहते हैं कि ऐसा यथार्थ स्वरूप समझने का कौन अधिकारी है, कौन पात्र है और बाद में कौन इसका सही पुरुषार्थ करता है, कि जिस मुमुक्ष जीव को अनंत जन्म मरण से मुक्त हो, कि ऐसा कौन सा मुक्ति का मार्ग है जो अनंत जन्म मरण से छुड़ाता है। अपने तो ये जो जैन दर्शन में आए हैं वो तो बहुत भाग्यशाली है, बहुत श्रीमंत है, कि जिसके कान में ये पड़ता है कि एक क्षण का सन्निक दर्शन अनंत जन्म मरण का छेद बढ़ाता है, तोड़ देता है। विश्व में तो ये बात ही नहीं है, सारे जगत में देखो तो ये बात नहीं है, किसी न किसी शुभ परिणाम से इसका अच्छा फल मिलता है, स्वर्ग मिलता है, पुण्य बनता है, अनुकूलता मिलती है। जैन दर्शन में मुक्ति का जो मार्ग है बहुत प्रसिद्ध रूप से कहा गया है, तो इसका मूल्यांकन जो है, इसकी जो कीमत है कि एक मरण से छुड़ाने के लिए पूरी संपत्ति का भोग देना हो तो वो अभी देता ही नहीं है, श्री सलामत तो पकड़े आप होता है। अनंत जन्म मरण से छुड़ाने वाले चीज की मूल्य कितनी है, पर उसी अनुसार इस मार्ग के संशोधन में जिसको जिज्ञासा पैदा हुई उसी प्रकार की इस तरह की जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा में ज्ञान में तत्व का यथार्थ स्वरूप जानने का एक निर्मल का भाव हो जाता है, पैदा हो जाता है, तो वही पात्र है ऐसा यहाँ कहने में आता है। इतनी कीमत लिए हुए वरना ऊपर ऊपर से तो जिज्ञासा होती है तो बहुत मामूली चीज है, अनंतर होती है, चलो तो जान तो ले रहे क्या है, जान लिया और कुछ स्मृति से संबंध कर लिया, बसंत कुछ हो गया कि पहले पर वो बात नहीं बैठती थी दिमाग में, अब कुछ दिमाग में सैर हो रही है, चलो तो अच्छा हुआ ये बात तो ऐसे ऊपर ऊपर की जिज्ञासा मात्रता का लक्षण, और उस लक्षण से और इस प्रकार की जिज्ञासा से कोई तत्व पाया, समीप प्रसन्न होना, मुक्ति का मार्ग होना, मार्ग में प्रवेश होना कभी दर्श गया है। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात को यहाँ लिया है, जो आत्माएं मुक्त हुई है, आगे कहते हैं जो आत्माएं दुखकाल में स्वच्छंद नाम का एक महापुरुष एक पैदा हो जाता है, यहाँ तो अधिकार ही मुमुक्षुता है, पर ये मुमुक्षु को स्वच्छंद पैदा हुआ इसका एक संकेत है। ये भी विषय थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका एक लक्षण दिया है स्वच्छंद का कि आप्त पुरुष आप्त मैंने विश्वसनीय विश्वास जिस पर रख सके, विश्वास के जो पात्र हो उसको आप्त कहते हैं, और विश्वास के पात्र कौन हो सकते हैं कि जो निर्दोष है विश्वास के पात्र है ना, तो बात है। सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्र देव जो पूर्ण विराग है, संपूर्ण निर्दोष है, उसको आप पुरुष कहने में आए हैं, और उसी को यथार्थ रूप में स्वीकार करने वाले और उसी के सिद्धांत को यानी निर्दोषता की परिपाटी रूप जो मार्ग है उस मार्ग में जो आए हैं, ऐसे जो संत है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है, चतुर्थ गुणसांत से लेकर मुनि पद के धारक है, आचार्य है, वे सभी विश्वास रखने लायक है। इनके वचन में अविश्वास नहीं करना उसी को अस्पसंद कहता है, और अविश्वास करना उसको पसंद कहने में आता है। इस पद का लक्षण दिया आप पुरुष ने, सब बात दिया आप में निर्दोष जो हुए हैं, मोक्ष निर्दोष मोक्ष मार्ग को जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे जो भी पुरुष है वे पुरुष के वचन पर विश्वास करना है, और उस पर विश्वास नहीं करना, उस पर आशंका करना, शंका करना उसको स्वच्छंद कहने में आता है, और ये स्वच्छंद एक महादोष है जो मुमुक्षुता की भूमिका में भी शंका के रूप में पैदा हो जाता है। उसको स्वच्छंद क्यों किया? स्वच्छंद कहने में क्या कारण है इसका? कि कारण इसलिए है कि उसको भी कुछ शास्त्र की जानकारी होगी तो ज्ञान करता है, ये ज्ञानी तो है लेकिन ऐसा कहा तो आगम से मेल नहीं करता है, आगम विरुद्धता ऐसा शंका आशंका डालना इस स्वच्छंद का लक्षण है, और ये स्वच्छंद है तो धर्म का ठोस बाधक कारण है। बाधक कारण तो बहुत से है ही, लेकिन मनुष्यता की भूमिका में कोई ठोस बाधक कारण हो तो ये स्मशान का जरूर है। आगे तो वो ये कहेंगे कि स्वच्छंद रूपी अंधत्व जिसको प्राप्त है ऐसा करके लिया है। स्वच्छंद को क्या हो गया? अंधत्व जिसको प्राप्त है उसको ऐसा रह जाता है भाव कि मैं भी कुछ समझता हूं। वो ज्ञानी का वचनों की बराबरी करता है, अपने के बराबर उसको गिनती में लेता है और अपने जैसा ही मान के तुलना करता है। ये जो दो आत्माएं मुक्त हुई है वो ऐसा स्वच्छंद से नहीं होती, एक भी आत्मा नहीं है कि जिसे मुक्ति का मार्ग मिला हो या मुक्ति मिली हो इसके फलस्वरूप स्वच्छंद युक्त हो। जिसका स्वच्छंद बराबर छूट गया है उसी जीव को मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। ये मुक्ति का कार्य करता है। स्वच्छंद वर्तन से मुक्त नहीं हुई है परंतु आप्त पुरुष द्वारा उपदिष्ट जो इसने उपदेश किया है, जो उसने प्रमाण किया है, उसी को पूरी भक्ति से, पूरा बहुमान से उसको अंगीकार करते हैं। जो ऐसे मनुष्य है कोई मुक्ति के मार्ग में प्रवेश करने के अधिकारी हो सकते हैं, दूसरे नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो स्वच्छंद से युक्त है इसलिए नहीं हो सकते। ऐसे 21 के रस में गहन विचारधारा कितनी गहनता है। अपने प्रश्न को मृत्यु के कारण में पाने की योग्यता ऐसे विचारों के धारक होते हैं उसमें रही है। और मनुष्यता क्या चीज है ये सब जो बातें हैं वो अपने वर्तमान अनुभव से उन्होंने कही है। तो उनकी मनुष्यता का काल था जिसमें उनको ये भाव आए हैं और भाव ही विकल्प मात्र नहीं आए हैं, इस भाव का स्वयं ने अनुभव किया है, इस योग्यता का स्वयं ने अनुभव किया है और अपने लेखन से उसको व्यक्त किया है। आगे 22वां वर्ष है उसमें सत्रांक 47 है उसमें बात करते हैं कि धर्म यह वस्तु बहुत दुख रही है। लोग जिसको धर्म धर्म कहते हैं ऐसे वो लौकिक धर्म की चीज नहीं है। धर्म है यह वस्तु बहुत गुप्त रही है। मैंने धर्म कोई जरूरी नहीं है, किसी भी संप्रदाय की जरूरी है, रिवाज है धर्म नहीं। कोई नाम स्मरण करना, भगवान के नाम का स्मरण करना कुछ माला जपना, कोई पूजा करना भगवान की कोई धर्म नहीं है, कोई उपवास करना वो कोई धर्म नहीं है, कोई यात्रा करना कोई धर्म नहीं है, कोई दान देना धर्म नहीं है, कोई किसी चीज से दया पालना वो धर्म नहीं है। ऐसी सब बातों को तो धर्म के नाम से लोग पुकारते हैं उसको यहाँ कहते हैं कि ये तो बहुत गुप्त चीज है। ऐसी प्रसन्न चीज नहीं है जिसको धर्म कहते हैं। जैन दर्शन में तो धर्म की परिभाषा ही दूसरी है, वस्तु सहा हो धम्मो ऐसा कर दिया। क्या कहा है? वस्तु का जो स्वभाव है वो तो एक बहुत जनरल परिभाषा है, विशाल परिभाषा है। आत्मा का जो धर्म है वो आत्मा का स्वभाव है ऐसा कहते हैं। ये जो धर्म के प्रसिद्ध नाम लिए जाते हैं ये कोई धर्म का स्वरूप नहीं है। हमने पहले पहले ये धर्म का सूत्र देखा तो ये लगा कि ये कोई रूढ़ी वाली बात नहीं है, जैन दर्शन में एक विज्ञान की कोई बात है, वस्तु स्वभाव वस्तु धर्म उसको धर्म कहते हैं, तो ये तो एक वस्तु का विज्ञान हो गया, ये कोई रूढ़ी रिवाज की बात नहीं रह गई। ऐसा जो धर्म है ये धर्म है वो बहुत गुप्त है, इसलिए कि ये अरूपी आत्मा का एक अरूपी परिणाम है जो बाहर में इंद्रिय गोचर नहीं होता और इंद्रिय ज्ञान से बुद्धि गोचर नहीं होता। ऐसा जो परिणाम है जो धर्मी के अंतरंग है, जो परिणाम धर्मी का अंतरंग है, तो अंतरंग होने से अंतर का अंग होने से अंदर का अंग होने से वो गुप्त रहता है, वो प्रसिद्ध रूप में दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि धर्म है ये बहुत गुप्त वस्तु रही है और ये बाह्य संशोधन से मिलने वाली नहीं, बाह्य शोधन से मिलने वाली नहीं। मैंने बाह्य दृष्टि से धर्म का स्वरूप कभी दृष्टिगोचर होता ही नहीं, प्राप्त होने का सवाल ही नहीं। बाह्य संशोधन में कितने ही लगे रहे, मैंने कितने दुनिया भर की जो किताबें हैं वो पढ़ ले। हमने ये सुना था आचार्य रजनीश के पर्सनल लाइब्रेरी में लाखों रुपयों की किताबें, हजारों की नहीं, कितने लाखों रुपयों की किताबें, और दुनिया भर का साहित्य बताया है। अपने लेक्चर में भी वो कभी कुरान का तो कभी इसमें से ओल्ड टेस्टामेंट में से अलग अलग विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में से गीता से बात देते हैं, मेमोरी भी इतनी शार्प थी, अब तो बोलते ही नहीं है लेकिन इसकी मेमोरी भी इतनी शार्प थी, तो ये जानदार के अनुसार सैकड़ों बातें जो लोग में प्रसिद्ध नहीं है ऐसे बता देते हैं, उनको आकर्षण भी होता है कि वाकई में कोई है। तो एक बाह्य संशोधन का विषय नहीं है कि वो पढ़ पढ़ के धर्म की प्राप्ति हो जाए और धर्म का साहित्य पढ़े और इसलिए कोई धर्म की प्राप्ति हो जाए और बाहर में कुछ भी कर ले गए, वो मार्ग है धर्म के विषय में जो प्रसिद्ध रूप में नजर आते हैं कि एक तो ज्ञान मार्ग है जिसमें ज्ञान दिखता है, व्यक्ति में ज्ञान बहुत है, बहुत बड़ा है, बहुत समझा है, समझा ही नहीं है वो समझा, दूसरे को समझाते भी हैं कितने हद तक का ज्ञान प्राप्त किया है और वो किसे धर्म मानते हैं, वो भी धर्म नहीं है। और एक त्याग इतना छोड़ दिया ऐसे त्याग को धर्म मानते हैं। लेकिन ऐसे दोनों बाह्य प्रकार में बाह्य संशोधन से धर्म कहाँ है, इसको कोई खोजे इस बाह्य संशोधन में कहीं भी धर्म नजर नहीं आएगा, धर्म दिखेगा नहीं, कहीं धर्म है नहीं, ऐसी एक परिस्थिति है। तो धर्म कैसे प्राप्त होता है ये भी साथ में उन्होंने लिखा है कि अपूर्व अंतर शोधन से प्राप्त होती है। धर्म गुप्त रही हुई चीज अपूर्व अंतर शोधन से ही प्राप्त होती है। अंतर शोधन इतना ही नहीं लिया, एक विशेषण और लगाया है कि अपूर्व अंतर शोधन से अनंत काल में ऐसा अंतर शोधन जिसने नहीं किया हो, इस ढंग का अंतर शोधन जिसमें हो ऐसा अपूर्व अंतर भोजन है कि धर्म का होता है, ये अंतर भोज का विषय है। बनारसी दास ने इस बात को लिखा है, तो खोजी जीवे वादी भरे, खोजी मैंने अपूर्व अंतर भोजन करने वाला, अपने आत्मा में अपने भाव का, विभिन्न भावों का अंतर अवलोकन करके इसके अंतर में खोज करता है जो, कि दरअसल में मेरा स्वरूप क्या है, वास्तविक रूप में मैं हूं कौन और कैसा हूं, ऐसा अपने स्वयं के स्वरूप के विषय में बहुत गहरी खोज है जिसकी कोई धर्म को प्राप्त करता है। ऊपरी ऊपरी वृत्ति से किसी भी प्रकार का प्रयत्न से ये धर्म नाम की जो चीज है वो हासिल होने वाली नहीं है, प्राप्त होने वाली नहीं है। अपूर्व अंतर शोधन से ये प्राप्त होती है। यह अंतर शोधन कोई एक महाभाग्य सदगुरु के अनुग्रह से पाता है। देखो यहाँ एक बात यही है कि देशना जो देशना लब्धि है ज्ञानी के निमित्त से ही होती है, भले ही इनका एक ही वचन उसको निमित्त पड़ जाए, अज्ञानी के लाख करोड़ अरब भाषण हो गए, लेकिन इसमें से कुछ भी देश का सबसे निमित्त होने वाली एक भी चीज नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरे आत्मा का हित होने कोई संभावना ज्ञानी के निमित्त बिना नहीं हो सकता, और जिसको ये निमित्त हो जाता है उसको यहाँ महाभाग्य कहा है। इसलिए महाभाग्य कहा कि इसका जन्म मरण कट जाएगा, उसको बाह्य संपत्ति मिल जाएगी या स्वर्ग मिल जाएगा इसके बाद नहीं दिया है, तो इसलिए महाभाग्य है कि इसको कोई ऐसे मार्ग प्राप्त, ऐसा जो सत्पुरुष है जिसको सद्गुरु कहने में आता है, सदेशना मिलती है उसको। प्रधान रूप से तो निर्ग्रंथ दिगंबर भावलिंग संत है, वही गुरु है, लेकिन जितने भी मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग की साधक धर्मात्मा है जिसके वचन मोक्ष मार्ग में निमित्त पड़ते हैं उसको सत्पुरुष कहने में आते हैं और वो उसके मार्ग मिलता है। इसलिए गुरु का जो निमित्त होता है मार्ग मिलने में वो इससे हुआ, इसलिए उनको भी सतगुरु कहने में आते हैं। अपने गुरुदेव थे वो ऐसे तो छठे साथ में गुरुस्थान भर्ती दिगंबर भावलिंग संत नहीं थे, इस भूमिका में वो नहीं पहुंचे हुए थे, क्योंकि उनको सतगुरु कहते हैं इसका यही कारण है कि इसका पारमार्थिक पहलू है, भले व्यवहारिक पहलू से गुरु नहीं कहे जाए लेकिन पारमार्थिक को कहे तो उसमें कोई अनुचित बात नहीं है, उचित ही है। तो कहते हैं कि अंतर शोधन, ऐसा अंतर शोधन का जो कार्य है, इस कार्य का जो कुछ है गुप्त रहस्य है, तो मार्ग जिसको प्राप्त है उसी के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि एक तो अनादि से अनजान मार्ग है और दूसरा ये अंतर्मुख का मार्ग है, कहीं भी बाहर इसकी कोई दिशा नहीं है कि कोई एक दिशा तो वो पकड़ ले, ऐसी कोई दिशा नहीं है और पूरा अंजान है, और उसके भूतकाल में भी स्वयं ने इस मार्ग को देखा नहीं है, अनुभव किया हुआ नहीं है और इसके संस्कार भी नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में उसको सरलता से मार्ग प्राप्ति होने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि सत्पुरुष का योग होना। तो इस विषय को यहाँ श्रीमद जी ने बहुमान से पुकारा है कि अगर किसी को भी ऐसा योग हो गया तो वो महामार्ग है, ऐसा करने कह दिया। ऐसी इसकी महत्ता रखी है कि अगर किसी को ऐसा योग हो गया तो ये महाभाग्य है, और उसी को सरलता से यानी आसानी से अंतर शोधन में क्या किस विधि से अंतर शोधन करना और धर्म की प्राप्ति करना मार्ग को आसानी से मिलने का एक बड़ा कारण बड़ा हेतु मिल गया है। इसलिए इसकी अच्छा महत्वता से ही बात किया है। आगे भी बात करेंगे उठान को स्नान को उचित क्रम में बच्चों के बढ़ेंगे। आज करेंगे।